एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं, एक ऐसी किताब के जरिए जो 20वीं सदी की शायद सबसे अहम आध्यात्मिक आत्मकथाओं में से एक मानी जाती है।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं सीएस लुईस की सरप्राइज्ड बाय जॉय की। 1955 में आई थी ये किताब, और ये सिर्फ एक लेखक के जीवन की कहानी भर नहीं है, है ना, ये तो एक गहरे बौद्धिक और हाँ आध्यात्मिक बदलाव का पूरा दस्तावेज है।
हाँ, और सीएस लुईस मतलब क्लाइव स्टेपल्स लुईस, जो 1898 से 1963 तक रहे, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में प्रोफेसर, कई लोग तो उन्हें द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया के लेखक के तौर पर ही जानते हैं।
सही कहा, लेकिन वो एक बहुत प्रभावशाली ईसाई विचारक और लेखक भी थे, और जो बात इस किताब को और लुईस की कहानी को आज भी इतनी मतलब रेलिवेंट बनाती है वो है उनका सफर।
कहाँ से कहाँ तक, एक कट्टर नास्तिक होने से लेकर ईसाई धर्म के सबसे मुखर और तर्कपूर्ण समर्थकों में से एक बनने तक का। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक इंसान जिसे लुईस आनंद या जॉय कहते हैं, वो एक खास तरह की गहरी मीठी सी दर्द भरी इच्छा होती है, उसकी तलाश में आखिरकार उस चीज तक पहुंच जाता है जिससे वो कह सकते हैं भाग रहा था।
अच्छा, तो ये आनंद की तलाश ही कुंजी है। चलिए फिर इस बौद्धिक और आत्मिक खोज को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि लुईस की यात्रा हमें विश्वास, तर्क और शायद जिंदगी के मतलब के बारे में क्या सिखा सकती है।
बिल्कुल, तो शुरुआत उनके बचपन से होती है, बेलफास्ट में। एक पढ़ा लिखा किताबों वाला माहौल था घर में।
हाँ, मैंने पढ़ा था उनका घर लिटिल ली जैसे किताबों का समंदर था, और अपने भाई वॉरेन के साथ मिलकर उन्होंने एक पूरी काल्पनिक दुनिया भी रची थी, बॉक्सन, है ना।
हाँ, बॉक्सन। तो शुरुआत में तो सब ठीक था, एक सुरक्षित कल्पना से भरा बचपन, लेकिन ये दुनिया बिखर गई जब लुईस सिर्फ 9 साल के थे। उनकी माँ फ्लोरा की कैंसर से मृत्यु हो गई।
ओ, ये तो बहुत छोटी उम्र थी, इसका असर तो गहरा पड़ा होगा।
बहुत ज्यादा। ये सिर्फ एक भावनात्मक चोट नहीं थी, ये एक तरह का धार्मिक संकट भी बन गया उनके लिए। उन्होंने प्रार्थना की लेकिन माँ बच नहीं पाई, बचपन का जो थोड़ा बहुत विश्वास था वो हिल गया। लुईस ने लिखा भी है, सारी स्थिर खुशियां, शांत और भरोसेमंद चीजें मेरे जीवन से जैसे गायब हो गईं।
और फिर?
और फिर पिता ने उन्हें इंग्लैंड भेज दिया, बोर्डिंग स्कूल में। ये उनके लिए जैसे स्वर्ग से निकाले जाने जैसा था। लिटिल ली की वो सुरक्षित दुनिया छूट गई।
और यहीं इन्हीं मुश्किल सालों में उन्हें पहली बार उस चीज का अनुभव हुआ जिसे वो आनंद या जॉय कहते हैं।
हाँ, यहीं पर। वो खिलौना बगीचा हो या बीट्रिक्स पॉटर की कोई कहानी या लॉन्गफेलो की कविता, लुईस साफ करते हैं कि ये पल खुशी के नहीं थे, ये किसी बहुत दूर की खूबसूरत और लगभग जिसे पा ना सके ऐसी चीज के लिए एक तेज तकलीफ देह सी इच्छा के पल थे।
मतलब खुशी नहीं बल्कि एक तरह की कसक,
कसक,
एक लालसा।
बिल्कुल, एक मीठी सी प्यास जो बुझती नहीं, और ये उनके जीवन भर एक थीम की तरह चलती रही। खैर, उनकी स्कूली शिक्षा का अनुभव भी बहुत कड़वा रहा।
हाँ, सुना है, पहला स्कूल जिसे वो बेल्सन कहते थे।
हाँ, मजाक में नाजी कैंप के नाम पर, वो बहुत क्रूर था। बाद का स्कूल मालमन, जिसे वो वाइवन कहते थे, वहां वो सामाजिक दबाव और खेलकूद के जुनून से जूझते रहे। सोचिए, एक किताबी लड़का, आयरिश लहजा, थोड़ा शर्मीला, उसके लिए आसान नहीं था, और यहीं उनकी नास्तिकता और पक्की होती गई।
लेकिन फिर उनकी पढ़ाई में और शायद जिंदगी में भी एक अहम मोड़ आया जब उन्हें प्राइवेट ट्यूशन के लिए भेजा गया विलियम टी केक पैट्रिक के पास।
हाँ, द ग्रेट नॉक। ये शायद उनके पिता का सबसे अच्छा फैसला था लुईस के लिए। केक पैट्रिक एक जबरदस्त तर्कवादी थे, कट्टर नास्तिक।
अच्छा।
हाँ, और उन्होंने लुईस को सिखाया कठोरता से तर्क करना, हर बात का सबूत मांगो, भावनाओं को तर्क पर हावी मत होने दो, बिल्कुल सटीक सोचो।
तार्किक आधार दिया।
हाँ।
उसी ने उन्हें वो औजार भी दिए जिनका इस्तेमाल लुईस ने बाद में उसी नास्तिकता को तोड़ने के लिए किया।
बिल्कुल सही, यही विडंबना है। किर्कपैट्रिक की ट्रेनिंग ने लुईस को एक सपने देखने वाले रोमांटिक लड़के से एक बहुत ही शार्प एनालिटिकल थिंकर बना दिया, और इसी ट्रेनिंग की वजह से वो ऑक्सफोर्ड की स्कॉलरशिप भी जीत पाए। किर्कपैट्रिक ने सिखाया कि सच की तलाश में तर्क का पीछा करना है, चाहे वो कहीं भी ले जाए।
फिर ऑक्सफोर्ड, प्रथम विश्व युद्ध में भी लड़े वो।
हाँ, बीच में पढ़ाई छोड़कर फ्रांस के मोर्चे पर गए, घायल हुए, कुछ दोस्तों को खोया भी। जाहिर है, युद्ध के अनुभवों ने उनकी नास्तिकता को शायद और मजबूती किया होगा। ऐसी क्रूर दुनिया में कोई दयालु ईश्वर कैसे हो सकता है।
लेकिन युद्ध के बाद वो ऑक्सफोर्ड लौटे और उनका एकेडमिक करियर तो बहुत शानदार रहा।
बेहद शानदार। तीन विषयों में फर्स्ट क्लास ऑनर्स पाया, जिसे ट्रिपल फर्स्ट कहते हैं, और फिर 1925 में मैग्डलिन कॉलेज ऑक्सफोर्ड में फेलो बन गए। अंग्रेजी साहित्य पढ़ाते थे। इस दौरान वो एक पूरे आत्मविश्वास से भरे नास्तिक थे, अपनी बौद्धिक क्षमता पर पूरा यकीन।
लेकिन जैसा आप कह रहे थे, यहीं उनकी नास्तिकता की नींव में दरारें पड़ने लगी थीं।
हाँ, सरप्राइज्ड बाय जॉय का असली क्लाइमैक्स यही है। कोई बाहरी घटना नहीं, बल्कि एक अंदरूनी क्रांति। लुईस बताते हैं कि कैसे धीरे धीरे, अनिच्छा से, मतलब बिना चाहे हुए, उन्हें एक बौद्धिक और आध्यात्मिक सच्चाई के सामने झुकना पड़ा। वो ईश्वर को एक ऐसे दिव्य शतरंज खिलाड़ी की तरह देखते हैं, जिसने उन्हें हर तरफ से घेर लिया था। चेकमेट।
इसमें कुछ किताबों का भी रोल था शायद। जॉर्ज मैकडोनल्ड की फैंटेस्टीज का जिक्र आता है।
हाँ, बहुत अहम रोल था। लुईस कहते हैं कि इस किताब ने उनकी कल्पना का बपतिस्मा किया, मतलब इसने उन्हें पवित्रता और पारलौकिकता का एहसास कराया, वो भी कल्पना के जरिए, बिना किसी उपदेश के। इसने दिखाया कि कल्पना सिर्फ बचपना नहीं है, ये सच्चाई तक पहुंचने का एक और रास्ता हो सकती है।
अच्छा।
और फिर जीके चेस्टर्टन की द एवरलास्टिंग मैन, इसने ईसाई धर्म को उनके सामने एक बहुत ही सुसंगत और शक्तिशाली सच्चे मिथक के रूप में रखा।
सच्चा मिथक, ये क्या होता है?
चेस्टर्टन और बाद में लुईस के दोस्त टॉल्किन का तर्क था कि मिथक सिर्फ झूठी कहानियां नहीं होते, वो इंसान की गहरी सच्चाइयों और इच्छाओं को दिखाते हैं, जैसे मरने वाले और फिर जी उठने वाले देवता की कहानियां। तो उनका कहना था कि ईसा मसीह की कहानी उन सभी मिथकों के पैटर्न को पूरा करती है। लेकिन ये सिर्फ कहानी नहीं, ये इतिहास में घटी एक वास्तविक घटना भी है। ये वो मिथक था जो सच हो गया।
दिलचस्प है। और उनके ऑक्सफोर्ड के दोस्त J.R.R. टॉल्किन जैसे लोग।
हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण था। लुईस ने पाया कि उनके कुछ सबसे बुद्धिमान, तर्कशील दोस्त, जैसे टॉल्किन, ह्यूगो डाइसन, ओविन बारफील्ड, ये सब पक्के ईसाई थे। ये उनके इस विचार के लिए एक बड़ी चुनौती थी कि भाई, विश्वास तो बस कमजोर दिमाग वालों के लिए होता है, यहां तो इतने तेज दिमाग वाले लोग विश्वास कर रहे थे।
तो ये सब चीजें मिलकर काम कर रही थी।
Yes.
तो आखिरकार ये बदलाव हुआ कैसे? आपने कहा दो चरणों में।
हाँ, पहला कदम था 1929 में, जब उन्होंने बहुत भारी मन से सिर्फ ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया, आस्तिकता जिसे कहते हैं। मतलब कोई एक ईश्वर है, जरूरी नहीं कि वो ईसाई वाला ईश्वर हो। वो लिखते हैं, शायद उस रात पूरे इंग्लैंड में सबसे उदास और अनिच्छुक धर्मांतरित मैं ही था। उन्हें लगा कि उनका तर्क अब उन्हें ईश्वर को नकारने नहीं दे रहा है।
ओके, ये तो सिर्फ ईश्वर को मानना हुआ, ईसाई धर्म तक कैसे पहुंचे?
वो दूसरा और आखिरी चरण था, सितंबर 1931 में, और इसकी चाबी बनी टॉल्किन और डायसन के साथ एक लंबी रात की बातचीत। उन्होंने वही सच्चे मिथक वाला तर्क पेश किया कि ईसा मसीह की कहानी इतिहास और मिथक का अनोखा संगम है। ये लुईस के लिए जैसे दिमाग की कोई गांठ खुलने जैसा था।
और फिर कुछ दिनों बाद वो विप्सनिट चिड़ियाघर वाली घटना।
हाँ, वो मशहूर घटना। अपने भाई वॉरेन के साथ मोटरसाइकिल के साइडकार में बैठकर विप्सनिट जू जा रहे थे। लुईस लिखते हैं, जब हम निकले तो मुझे विश्वास नहीं था कि ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र हैं, और जब हम चिड़ियाघर पहुंचे तो मुझे विश्वास था। ये कोई बिजली कड़कने जैसा अनुभव नहीं था, बस एक शांत पक्की सी स्वीकृति थी कि हाँ, अब मैं विश्वास करता हूं।
तो वो जो आनंद की तलाश थी, वो यहां आकर पूरी हुई।
हाँ, कह सकते हैं कि उस आनंद ने जिस मंजिल की ओर इशारा किया था, लुईस आखिरकार वहां पहुंच गए थे।
तो इस पूरी यात्रा के पीछे लुईस का जो मूल दर्शन है, खासकर ये आनंद का विचार, वो क्या है?
उनके दर्शन का केंद्र है जिसे अक्सर इच्छा से तर्क या आर्ग्यूमेंट फ्रॉम डिजायर कहा जाता है। लुईस का मानना था कि हमारी जो गहरी प्राकृतिक इच्छाएं होती हैं, वो असल चीजों से जुड़ी होती हैं। जैसे भूख है तो मतलब भोजन जैसी कोई चीज है, प्यास है तो पानी है।
अच्छा।
तो उनका तर्क ये था कि अगर हमारे अंदर ये आनंद नाम की गहरी अतृप्त इच्छा है, ऐसी इच्छा जो दुनिया की कोई भी चीज पूरी तरह शांत नहीं कर सकती, तो ये सोचना अतार्किक है कि बस यही एक इच्छा है जिसका कोई असली जवाब नहीं है।
बिल्कुल। तो लुईस के लिए ये आनंद एक तरह की घर की याद थी, होम सिकनेस, हमारे असली घर यानी ईश्वर और आध्यात्मिक दुनिया की ओर एक इशारा। ये उनके बदलने का एक मुख्य बौद्धिक कारण बना। और पूरी यात्रा में आप देखिए, बौद्धिक ईमानदारी सबसे ऊपर रही।
हाँ, ये आप तो साफ दिखती है। वो कोई ऐसा विश्वास नहीं रख सकते थे जो उनके तर्क के खिलाफ हो। इसीलिए तो उन्होंने नास्तिकता छोड़ी, क्योंकि उनके अपने अनुभव और उनका अपना तर्क उसे सही नहीं ठहरा पा रहा था। उनका बदलना भावनाओं में बहना नहीं था, बल्कि अनिच्छा से तर्क का पीछा करने का नतीजा था।
और उन्होंने आनंद को खुशी और सुख से अलग बताया। ये अंतर समझना भी जरूरी है शायद।
हाँ, बहुत जरूरी। सुख तो इंद्रियों से जुड़ा है, जैसे अच्छा खाना खा लिया। खुशी हालात पर निर्भर करती है, प्रमोशन मिल गया, शादी हो गई। लेकिन आनंद एक पल भर की तीव्र मीठी कसक वाली लालसा है, जो हमें किसी पारलौकिक चीज की ओर खींचती है। ये खुद मंजिल नहीं, बल्कि मंजिल की ओर इशारा करने वाला एक संकेत था, एक साइन पोस्ट।
चलिए लुईस के जीवन के उन तीन खास मोड़ों पर फिर से ध्यान दें जिन्होंने उनकी दिशा ही बदल दी। पहला जाहिर है उनकी माँ की मृत्यु।
उनकी माँ की मृत्यु 1908, 9 साल की उम्र में यह हादसा। ये सिर्फ दुखद नहीं था, ये उनके लिए दुनिया के सुरक्षित होने के विचार का अंत था। इसने ईश्वर में उनके बच्चे वाले विश्वास को तोड़ दिया। ब्रह्मांड कैसा है, ईश्वर की अच्छाई क्या है, इन सब पर गहरे सवाल खड़े कर दिए। ये उनकी बात की नास्तिकता और जीवन भर चलने वाली अर्थ की खोज की, कह सकते हैं, नींव बना।
दूसरा मोड़ जिसने उनके सोचने का तरीका ही बदल दिया, वो था विलियम टी किर्कपैट्रिक के साथ अध्ययन 1914 से 17।
हाँ, ये उनका बौद्धिक ट्रांसफॉर्मेशन था। किर्कपैट्रिक ने उन्हें एक सपने देखने वाले भावुक लड़के से एक कठोर अनुशासित विचारक बना दिया। और विडंबना देखिए, किर्कपैट्रिक खुद नास्तिक थे, पर उन्होंने अनजाने में लुईस को वो हथियार दिए जिनका इस्तेमाल लुईस ने बाद में विश्वास की तार्किक नींव रखने के लिए किया। ये दिखाता है कि सच्ची बौद्धिक जिज्ञासा आपको कहीं भी ले जा सकती है।
और तीसरा मोड़ थोड़ा अलग था। जॉर्ज मैकडोनल्ड की किताब फैंटास्टिस पढ़ना, लगभग 1916, ये तो एक काल्पनिक कहानी थी। इसने कैसे इतना बड़ा असर डाला?
लुईस के लिए ये सिर्फ कहानी नहीं थी, इसे पढ़ते हुए उन्हें लगा कि उनकी कल्पना का जैसे बपतिस्मा हो गया है। मतलब ये कि इस किताब ने उन्हें पवित्रता, अच्छाई और एक दूसरी दुनिया का अनुभव कराया, वो भी कल्पना के जरिए, बिना किसी धर्मोपदेश के। इसने उनके अंदर के रोमांटिक और तर्कवादी, इन दोनों हिस्सों के बीच एक पुल बनाना शुरू किया। इसने दिखाया कि मिथक, कल्पना, कहानियां, ये सिर्फ बचपना या भागना नहीं है, बल्कि गहरी सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता भी हो सकती हैं। ये उनके मन और हृदय को जोड़ने की शुरुआत थी, कह सकते हैं।
अगर हम लुईस की कहानी से आज के लिए कुछ सबक निकालना चाहें तो क्या होंगे? एक बात तो साफ लगती है, हमारी जो गहरी इच्छाएं हैं जिन्हें हम अक्सर समझ नहीं पाते या नज़रअंदाज कर देते हैं, वो शायद बहुत मायने रखती हैं।
बिल्कुल, लुईस हमें चुनौती देते हैं कि हम अपनी उस गहरी, कभी ना पूरी होने वाली इच्छा, उस आनंद पर ध्यान दें। क्या वो सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक असंतोष है, या शायद इस बात का इशारा कि हम सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं बने हैं? और दूसरी बात, उनकी कहानी बौद्धिक ईमानदारी का महत्व दिखाती है। उन्होंने तर्क का रास्ता नहीं छोड़ा, और वही रास्ता उन्हें विश्वास तक ले गया, भले ही वो जाना नहीं चाहते थे।
ये भी अहम है कि उनका बदलना कोई एक दिन का चमत्कार नहीं था। ये सालों तक चली एक धीमी, संघर्ष भरी, कई बार तकलीफदेह प्रक्रिया थी। शायद ये उन लोगों के लिए ज्यादा भरोसेमंद लगे जो खुद शक और सवालों से गुजरते हैं। ये दिखाता है कि विश्वास तक पहुंचना एक गंभीर बौद्धिक यात्रा भी हो सकती है, सिर्फ भावनात्मक उछाल नहीं।
और हाँ, कल्पना की शक्ति, तर्क के साथ साथ मिथकों, कहानियों, कल्पना ने उन्हें दुनिया को एक नए नजरिए से देखने में मदद की। आज के जमाने में जहां अक्सर विश्वास और तर्क को दुश्मन माना जाता है, लुईस का सफर एक अलग रास्ता दिखाता है, एक ऐसा रास्ता जहां दिल और दिमाग, कल्पना और तर्क साथ मिलकर सच्चाई की खोज कर सकते हैं। उनकी पूरी यात्रा यही दिखाती है कि अपने अनुभवों और अपने तर्क के प्रति ईमानदार रहना कितना जरूरी है, भले ही वो हमें ऐसे नतीजों तक ले जाएं जिनकी हमने उम्मीद न की हो।
तो इस सारी बातचीत से हम तीन मुख्य बातें क्या निकाल सकते हैं?
पहली, एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि। बचपन का गहरा सदमा, जैसे माँ की मृत्यु, किसी इंसान के पूरे जीवन की दिशा और उसकी आध्यात्मिक खोज को आकार दे सकता है। मतलब व्यक्तिगत पीड़ा हमें अस्तित्व के बड़े सवालों से जूझने पर मजबूर कर सकती है, और वही शायद गहरे अर्थ की तलाश की शुरुआत बनती है।
दूसरा,
एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि। आनंद, खुशी और सुख, इन तीनों में फर्क करना बहुत जरूरी है। लुईस के लिए आनंद मंजिल नहीं थी, बल्कि एक दिशा दिखाने वाला तीर था, एक पल भर की तीव्र इच्छा जो किसी बड़ी, इस दुनिया से परे की सच्चाई की ओर इशारा करती है। जिसे हम अक्सर जीवन में खुशी समझकर ढूंढते हैं, शायद वो ये आनंद नहीं है। इस फर्क को समझना उनके विचारों और जीवन को समझने की कुंजी है।
सही कहा। और आखिर में एक सार्वभौमिक सबक,
एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि। अक्सर हम उसी चीज से भाग रहे होते हैं जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लुईस का वो अनिच्छा से बदलना, ईश्वर को पीछा करने वाली बिल्ली या शतरंज के खिलाड़ी के रूप में देखना, ये दिखाता है कि सच्चाई कभी कभी हमारा पीछा करती है, भले ही हम उसे मानने को तैयार ना हो। बौद्धिक ईमानदारी हमें ऐसे निष्कर्षों तक ले जा सकती है जो भावनात्मक रूप से मुश्किल हों, लेकिन आखिर में उन्हें स्वीकार करना शायद हमें आजाद करता है। ये हमें असली होने की, प्रामाणिक होने की चुनौती देता है।
लुईस की ये यात्रा वाकई सोचने पर मजबूर करती है, क्या हमारी अपनी जिंदगी में भी कोई ऐसा आनंद है, कोई ऐसी गहरी इच्छा जिससे हम नजरअंदाज कर रहे हैं, और अगर है तो वो हमें किस ओर इशारा कर रही है। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एक्त्रा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।